सेहत की बातें डॉक्टर से बातें, क्या करें क्या ना करें, रोगों से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते रहें अर्पण रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी।
श्रोताओं, भगवान के बनाए हमारे शरीर के हर अंग का अपना काम है, अपना आकार है, अपनी कार्यविधि है। जब इन अंगों में से कोई अंग सही तरीके से काम नहीं करता है तो हम उससे संबंधित डॉक्टर के पास जाते हैं। कई बार जन्मजात किसी अंग का निर्माण सही ढंग से नहीं हो पाता या एक्सीडेंट, जलने जैसे हादसों के कारण किसी अंग का नुकसान हो जाता है, तब भी उन शरीर के बाहरी हिस्सों को शेप देकर, आकार बनाकर, शरीर की कार्यविधि के साथ स्कारलेस यानी कि बिना किसी टांके या निशान छोड़े शरीर में हर तरह का सुधार भी अब संभव है। सिर्फ विदेशों में नहीं, भारत में भी और हमारे बिलासपुर में भी। क्या क्या संभव है, कैसे कैसे संभव है, इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर विवेक चौबे। डॉक्टर विवेक चौबे, जिन्होंने विश्व विख्यात प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर देवेश मेहता के साथ अहमदाबाद में काफी समय काम किया है, कोचीन में कुछ समय अपनी सेवाएं दी हैं, फिर रायपुर के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में कई साल काम करने के बाद अब बिलासपुर के आरबी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब हम आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि प्लास्टिक सर्जरी का नाम प्लास्टिक शब्द के साथ क्यों जुड़ा हुआ है?
देखिए, प्लास्टिक जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, प्लास्टिकोस, जिसका मतलब होता है मोल्ड। मतलब हम प्लास्टिक सर्जरी में किसी भी हमारे जो शरीर के जो अंग होते हैं या टिश्यू होते हैं उसको हम मोड़ के एक नया रूप दे देते हैं, मोल्ड किया जाता है, नए सांचे में ढाला जाता है, इसलिए इसे प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं।
आम आदमी प्लास्टिक सर्जरी शब्द को सुनकर सोचता है कि सिर्फ सुंदर बनाने की सर्जरी होती है, क्या इसका सिर्फ इतना ही काम होता है?
सामान्यतः यही एक प्रचलित भावना है कि प्लास्टिक सर्जरी मतलब केवल सुंदर बनाने की प्रक्रिया है। नॉर्मली प्लास्टिक सर्जरी देख के हम इस चीज़ का अनुमान लगाते हैं कि जिस तरीके से फिल्म सिने तारिकाएँ या जो हीरो होते हैं उनकी प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, उन्हें सुंदर बनाया जाता है, सिक्स पैक ऐप बनाए जाते हैं, केवल वही प्लास्टिक सर्जरी है। सामान्यतः प्लास्टिक सर्जरी के तीन भाग होते हैं। पहला बर्न, जिसमें जले हुए व्यक्ति का इलाज करते हैं। दूसरा रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जिसमें किसी भी प्रकार से अंग भंग हुए अंगों का पुनर्निर्माण करते हैं, जो किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, कैंसर के कारण हो सकता है या चोट के कारण हो सकता है। और तीसरा हिस्सा प्लास्टिक सर्जरी का जो है वो कॉस्मेटिक सर्जरी है, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति को हम और सुंदर बनाने की प्रक्रिया करते हैं।
तो आपने बात की कि प्लास्टिक सर्जरी के तीन भाग हैं, पहला बर्न, दूसरा रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, तीसरा कॉस्मेटिक सर्जरी। तो हम बात सबसे पहले बर्न की शुरू करते हैं।
बर्न का जो इलाज से पहले रोकथाम आवश्यक होती है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं वो गर्म चीज़ों के सानिध्य में ना आने पाएँ। सामान्यतः हम क्या करते हैं, चाय पीते पीते उसे अपने बिस्तर या टेबल में रख देते हैं, बच्चा खेलते हुए आता है, उसके संपर्क में आता है और जल जाता है। दूसरा, गांवों में चूल्हा जो होता है वो जमीन में होता है, तो इस समय बच्चा जो रहता है वो रेंगते हुए या खेलते हुए उस आग के समीप में आता है और उसका शिकार हो जाता है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रयोग है उसका नियम पूर्वक करना चाहिए, गीले हाथों से स्विच को ना छुआ जाए। उसके बाद जितनी भी जो तारें हैं उसका प्रॉपर इलाज किया जाए ताकि शॉर्ट सर्किट की संभावना से हम बच पाए।
ये तो हुई जलने से बचने की बातें, लेकिन यदि कोई व्यक्ति जल ही गया तो घर वालों को कितनी और कैसे तत्परता दिखानी चाहिए?
सबसे पहले आपको जो इलाज करना है उसमें पानी डालना है। अंग्रेजी में जो हमें सिखाया जाता है कि पोर द वाटर टिल द बर्न सबसाइड्स, मतलब पानी तब तक उस जले हुए शरीर के हिस्से में डालिए जब तक कि वहाँ पे जलन शांत ना हो जाए। इस प्रक्रिया में लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त लग सकता है। जो पानी का तापमान होना चाहिए वो सामान्य तापमान होना चाहिए, बहुत ठंडा या बर्फ का पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
नल का सादा पानी
इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है कि जिसमें हम नल का सादा पानी अपन नहीं ले सकते हैं, अपने हाथ या जले हुए हिस्से को एक साफ पानी की बाल्टी में या बर्तन में हम उसे डुबा कर रखते हैं।
जी।
जलने के बाद अक्सर एक फफोला पड़ जाता है, लोग उसके साथ छेड़खानी करते हैं। वो कितना सही है कितना गलत है, फफोला पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए?
फफोले जो पड़ते हैं वो सामान्यतः जो ऊपरी बर्न होते हैं, जो सतही बर्न होते हैं, जो बहुत डीप या अंदरूनी हिस्से तक नहीं जाते हैं, उसका द्योतक होते हैं। तो अगर मान लो फफोले पड़ रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है और बहुत ही अच्छा लक्षण है और हमें इसे अच्छे पॉजिटिवली लेना होगा।
जलने के बाद फौरन कुछ घंटों के अंदर डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत जरूरी होता है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत क्या फौरन पड़ती है? वो काम तो बाद में भी हो पाता होगा।
इसमें सबसे जरूरी चीज है बर्न के कारण जो डैमेज हो रहा है उसे हम उसी क्षण हम कम से कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं।
अच्छा।
उसमें जब हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं जलने के कारण बर्न के कारण जो क्षति होती है उसको हम कम से कम करते हैं। जब हम क्षति को कम से कम करते हैं तो उसके बाद आफ्टर इफेक्ट उसके बहुत ही कम होते हैं।
अच्छा।
और दूसरा, संक्रमण जैसे ही जो हिस्सा जलता है वहाँ के सारे कीटाणु मृत हो जाते हैं, तो वहाँ पे कोई संक्रमण नहीं होता। अगर उस समय से ही इलाज चालू कर दिया जाए तो मरीज को संक्रमण से पूरी तरीके से बचाया जा सकता है।
प्लास्टिक सर्जरी का कितने परसेंट जल जाता है व्यक्ति तब स्किन ग्राफ्टिंग और प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है?
सामान्यतः जो हमारा प्लास्टिक सर्जरी का लिटरेचर कहता है 95% जले हुए मरीजों को सफलतापूर्वक बचाया गया है, पर ये मुख्यतः विदेशों में होता है जहाँ पे संसाधनों का अभाव नहीं होता। सामान्यतः जो हम 80-85% जले हुए मरीज हैं उसको मैक्सिमम हम बचा पाते हैं। अगर कभी भी चमड़ी पूरी तरीके से जल चुकी है, वहाँ पे घाव बन चुका है, तब वहाँ पे हमें प्लास्टिक सर्जरी या स्किन ग्राफ्टिंग करने की आवश्यकता होती है। अगर समय पे इलाज किया जाता है तो हमने ये पाया है कि मरीज इस तरीके से भी होते हैं कि जिनमें आप देख के भी नहीं बता सकते हैं कि वो ज़िंदगी में कभी जले हैं। उसके लिए आवश्यक ये है कि जलने के तुरंत बाद विशेषज्ञ की सलाह ली जाए, समय पे उसका इलाज चालू किया जाए, तो हो सकता है कि आपका जो जला हुआ शरीर का हिस्सा है वो पहले की तरह पूर्णतः सामान्य हो जाए और जिसे कोई दूसरा कभी पकड़ ही ना पाए।
इसलिए श्रोताओं, ध्यान रखिए कि अगर आपके सामने जलने से संबंधित कोई भी हादसा होता है तो मरीज को फौरन डॉक्टर के पास ले जाएं और ऐसे डॉक्टर को जल्द से जल्द जरूर दिखाएं जिससे बाद में पड़ने वाले निशान व्यक्ति के मन को डिप्रेशन और कुंठा से न भर दें, क्योंकि जितनी जल्दी मरीज डॉक्टर के पास पहुंचेगा क्षति उतनी कम होगी। जलने के बाद अब बात करते हैं हम एक्सीडेंट से होने वाले नुकसानों के संदर्भ में प्लास्टिक सर्जरी की क्या भूमिका हो सकती है।
जिनका चेहरे में चोट लगी, चेहरे में चाहे नाक हो या यहाँ पे चेहरे की जो हड्डियाँ हो, जबड़े की हड्डियाँ हो, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। उसके कारण दो समस्याएं आती हैं, एक तुरंत जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है और जान भी जा सकती है, दूसरा जिसमें वो खाना खाने में या खाना चबाने में वो असमर्थ होता है, तीसरा उसको देखने में भी समस्या आ सकती है क्योंकि चेहरे की हड्डियाँ टूट जाती हैं, आंखें नीचे की ओर आ जाती हैं। और अगर वक्त रहते ही जबड़े की हड्डियाँ या चेहरे की हड्डियों को अच्छे से प्लास्टिक सर्जरी अगर की जाए तो ऐसा देखा जाता है कि कई बार मरीज को आप पहचान के ये बता भी नहीं पाएंगे कि कभी इसे चोट भी लगी है।
स्किन ड्राफ्टिंग करने के लिए क्या उसी व्यक्ति की स्किन की जरूरत होती है या किसी और की स्किन भी ली जा सकती है?
देखिए, सामान्यतः पर जो हम स्किन ड्राफ्टिंग करते हैं उसमें उसी ही मरीज की चमड़ी होती है, उसी को ही हमें लेना होता है, पर इसका अपवाद सिर्फ जले हुए मरीज हैं जहाँ पर बहुत ही ज्यादा जला हुआ है, मान लो 70% या 80%, उस केस में या मृत से, मृत जिसे इंग्लिश में कैडेवर कहते हैं, या फिर किसी रिश्तेदार से जैसे माता पिता, भाई बहन या किसी अन्य व्यक्ति से चमड़ी लेते हैं और उस जगह में लगा देते हैं, पर यह अस्थाई होती है जो 14 से 21 दिन के बाद वो उस स्थान से निकल जाती है। पर इस चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि उस समय तक वो संक्रमण से बचाने में सफल हो जाती है।
स्किन ड्राफ्टिंग के लिए अक्सर आप लोग पीठ की स्किन या जांघ की स्किन या हाथ के किसी हिस्से से स्किन लेते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस होता है?
देखिए, स्किन ग्राफ्टिंग में दो तरीके से की जाती है। एक जो सामान्यतः की जाती है वो बोलते हैं पार्शियल थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग, मतलब चमड़ी की पूरी लेयर ना लेकर ऊपरी लेयर ही ली जाती है। दूसरी होती है फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग, जिसमें चमड़ी की पूरी लेयर एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लिया जाता है, जिसके कारण फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग में उसका कॉस्मेटिक रिजल्ट बेहतर होता है। और जो स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग, जो पतली चमड़ी जो हम लेते हैं, उसमें जो स्किन ग्राफ्टिंग रहती है उसमें थोड़ा सा सामान्य चमड़ी से वो फर्क नजर आता है।
उस चमड़ी के जो डर्मिस और एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं, क्या वही बढ़ करके हमारे शरीर में?
जी, जो चमड़ी हमने जैसे ली हुई होती है वह उस जगह में पुनः वहाँ पे खून की नलियाँ वहाँ पे विकसित हो जाती हैं और वो उस शरीर या उस जगह का वो सामान्य हिस्से की तरह हो जाता है।
डॉक्टर विवेक चौबे ने दी हमको एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि प्लास्टिक सर्जरी का सबसे प्रभावी काम क्या कहा जाता है।
सबसे प्रभावी स्थिति जो होती है जिसमें प्लास्टिक सर्जरी ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है वो ये कि अगर मान लो किसी का हाथ, उंगली या पैर या शरीर का कोई हिस्सा कट के अलग हो जाता है, उसको पुनः माइक्रो सर्जरी के द्वारा अर्थात खून की बारीक नलियों को पुनः जोड़ के उस शरीर के कटे हुए हिस्से को वापस उसी जगह में वैसे ही लगाया जा सकता है।
अच्छा, ये सुविधाएं तो सिर्फ बड़े शहरों में ही उपलब्ध होंगी ना?
नहीं, ये एक भ्रांति है। ये सुविधाएं बिलासपुर में भी उपलब्ध हैं, जहाँ पे इस चीज में जो कटा हुआ हाथ है उसको दोबारा सफलतापूर्वक जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में लगभग 7 या 8 घंटे लगते हैं। लंबी प्रक्रिया है, बहुत ही बारीक काम करना होता है, और पर ये बिलासपुर में संभव है। देखिए, जो उंगली अगर कटी हुई है या आपका किसी का हाथ कटा हुआ है, उस प्रक्रिया में उस हाथ को किस तरीके से उसे प्रिजर्व किया गया है, संरक्षित किया गया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
तो सबसे पहले तो वो जो पेशेंट है या जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसके घर वालों का रोल सबसे महत्वपूर्ण है कि वो उस कटे भाग को किस रूप में डॉक्टर के पास तक लाए।
जी, उसको लाने की एक प्रक्रिया होती है। उसमें जो कटा हुआ जो हिस्सा होता है उसे एक पॉलीथिन में रैप किया जाता है, पॉलीथिन में थोड़ा सा अमाउंट सलाइन का डाला जाता है और उस पॉलीथिन वाले बैग को फिर आइस में या बर्फ में उसे रखा जाता है, उसे संरक्षित करके जल्दी से जल्दी उसे प्लास्टिक सर्जरी सेंटर में लाया जाता है, जहाँ पे उसको पुनः जोड़ा जाता है। सामान्यतः ये माना जाता है कि हाथ या पैर का 6 घंटे के भीतर अगर उसे दोबारा लगाया जाए तो वो सफलतापूर्वक लग जाता है। अगर 6 घंटे से बाद में फिर कटे हुए शरीर के हिस्से में डैमेज होना चालू हो जाता है, इस कारण वो लग नहीं पाता।
कुछ जन्मजात विकृतियां होती हैं जो पैदाइश के समय से बच्चों में दिखाई पड़ती हैं, और इन विकृतियों को जितनी जल्दी दूर किया जा सके हर किसी के लिए वो जरूरी होता है, क्योंकि जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता जाएगा उस विकृति को लेकर उसके मन में एक कुंठा आती जाएगी। ऐसे में बहुत जरूरी है कि बच्चे के माँ बाप ऐसे डॉक्टर्स के पास जरूर और जल्दी से जल्दी पहुंचें। क्या और कैसी विकृतियां होती हैं ये, और कितनी जल्दी पहुंचना है डॉक्टर्स के पास, चलिए डॉक्टर साहब से ही इसकी जानकारी लेते हैं।
जन्मजात विकृतियों में जो सामान्यतः पाई जाती हैं वो कटे फटे होठ होते हैं, तालू होते हैं। कटे फटे होठ होने के कारण केवल दिखने में तकलीफ आती है या कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब तालू अंदर का कटा हुआ होता है उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कान का इन्फेक्शन होना, बच्चे की आवाज़ जो होती है वो बहुत ही असामान्य होती है, वो नॉर्मल बोल नहीं पाता है, जब वो बोलता है तो उसकी बात को सामान्य रूप से समझा नहीं जा सकता है। इसलिए क्लेफ्ट लिप या कटे हुए होठ का इलाज सुंदर बनने के लिए, ताकि आगे आने वाले समय में बच्चे को किसी भी प्रकार का डिप्रेशन ना रहे, और कटा होठ जो तालू है वो सामान्य प्रक्रिया, जो सामान्य शरीर की जो स्थिति है उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। सामान्यतः जो कटा हुआ जो होठ होता है उसको 2 से 3 महीने के आयु में उसको रिपेयर किया जाता है, और जो कटे हुए जो तालू होते हैं उसको लगभग 8 से 15 महीने के भीतर में आइडियली उसे रिपेयर किया जाना चाहिए।
और जिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है और उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनके बच्चों के होठ कटे हुए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए?
देखिए, इसका इलाज तो हमने 60 वर्ष के आयु के एक एक पुरुष का क्लेफ्ट लिप पैलेट ऑपरेट किया हुआ है, जब भी हो जाए, जब आपको पता चलता है, जब आपको इस चीज़ की जानकारी हो जाती है, उस समय में जितना डैमेज हो गया है उसको हम कम से कम कर सकते हैं। इसमें अगर मान लो कटा हुआ होठ है, कटा हुआ तालू है, और वो अगर 5 साल के बाद अगर हम ऑपरेट करते हैं तो उसमें जो उसकी स्पीच है वो सामान्य नहीं हो पाती है।
रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के अंतर्गत तालू और ओट के अलावा और कौन से अंगों में इस तरह की विकृतियां होती हैं जिनको प्लास्टिक सर्जन दूर करते हैं?
इसमें खून की नलियों का जो गठान होती है जिसे एवी माल फॉर्मेशन कहते हैं, ये बहुत छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी होती है। कुछ जो एवी माल फॉर्मेशन या हेमेंजोमा कहते हैं वो अपने आप 2 से 7 साल की उम्र में वो अपने आप गायब हो जाती हैं, जो जन्म के समय होती है।
अच्छा।
कुछ टाइप की एवी माल फॉर्मेशन होती है जिसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः ये देखा गया था कि इसे बड़े शहरों में ही ऑपरेशन किया जाएगा क्योंकि ये जटिल प्रक्रिया होती है। अब इसे पूरी तरीके से पूरा जो खून की नलियों का जो गुच्छा होता है उसे ऑपरेशन करके सावधानी पूर्वक निकाल के रक्त स्राव को एकदम कम करके उसे निकाला जाता है और उसमें जो बच्चा या व्यक्ति होता है वो सामान्य स्थिति में पहुंच जाता है।
आप नसों के गुच्छे से संबंधित बात बोल रहे हैं जो जन्मजात होती है, लेकिन नसों की गुच्छे वाली एक बीमारी का नाम हम और जानते हैं, वेरिकॉज, जो बड़ी उम्र में होती है।
जी,
तो क्या उसका भी कुछ तरीका है पूरी तरह ठीक करने का?
वेरिकोज वेन जो होती है सामान्यतः वो दोनों पैरों में पाई जाती है। ये लंबे लोगों में सामान्यतः देखी गई है और ये महिलाओं में भी बहुत कॉमन है जो चाइल्ड बेरिंग कर चुके हैं, जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया हुआ है। इसमें जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं, जो ऊपरी वेन्स होती हैं, खून की नलियाँ होती हैं, उसमें खून का जमाव होना चालू हो जाता है और वो चौड़ी हो जाती है, जिसके कारण मरीज के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वहाँ पे बाद में घाव भी बन सकता है। इसका इलाज भी सफलतापूर्वक प्लास्टिक सर्जरी में किया जाता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो वेरिकोज वेन, जो खराब वेन हो चुकी होती है उसको सब परफोरेटर लाइगेशन करके और सफेनोफेमोरल जंक्शन को लाइगेट करके उसको पूरी तरीके से निजात पाया जाता है। और दूसरा, अगर मान लो वहाँ पे घाव हो गया है तो उसका फ्लैप या स्किन ग्राफ्टिंग के द्वारा परमानेंट इलाज किया जाता है।
बात जलने की हो गई, एक्सीडेंट्स की हो गई, जन्मजात विकृतियों की हो गई, जिनमें प्लास्टिक सर्जरी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम बात करते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी की। हम अक्सर पढ़ते सुनते रहते हैं फलां हीरोइन ने अपनी नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवाई और अपनी सुंदरता बढ़ाई, या फलां हीरो ने 6-पैक एब्स बनवाए अपनी बॉडी को रीशेप करने के लिए। तो ये सारी बातें आती हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के अंतर्गत। ये सारे काम तो प्लास्टिक सर्जन करते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही आम आदमी जो सबसे ज़्यादा काम करवाता है वो
हेयर ट्रांसप्लांट होती है। हेयर ट्रांसप्लांट गंजेपन का स्थायी समाधान होता है। सामान्यतः एक मनुष्य के शरीर में 1 लाख बाल होते हैं। गंजेपन की प्रक्रिया जो अनुवांशिक होती है, प्रदूषण के कारण होती है, न्यूट्रिशन की कमी के कारण होती है, जिसमें प्रोटीन और विटामिन्स की कमी होती है, तब बाल झड़ने लगते हैं। ये सामान्यतः उम्र के बढ़ने के साथ पाया जाता है। अब हेयर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया के द्वारा हम केश प्रत्यारोपण करके पुनः एक युवा अवस्था को फिर से प्राप्त कर सकते हैं।
अच्छा, तो वो जो हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं वो ब्लैक कलर के ही निकलते हैं ना बाल?
इसमें सामान्यतः जो आपके बाल होते हैं, जो मान लो आपके सफ़ेद बाल हैं, तो वो सफ़ेद बाल सामने की तरफ आ जाएंगे या जिस जगह में नहीं है वहाँ आ जाएंगे, पर हेयर ट्रांसप्लांट से केश के रंग का परिवर्तन नहीं हो पाता
है। लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है, बालों के झड़ने की समस्या बहुत सारे लोगों को होती है, गंजेपन से हर कोई घबराता है
जी,
लेकिन ये प्रक्रिया ऐसा सुना जाता है कि बहुत महंगी होती है
जी,
तो क्या खर्चा आता है, कितना टाइम लगता है बालों के बढ़ने में और लगने में, उसके बारे में भी?
देखिए, सामान्यतः हमें लगता है कि किसी के सिर में बाल कम हैं, पर मैंने ये अक्सर पाया है कि ऐसे व्यक्ति जिनके सिर में बाल कम हैं, जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है, वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं। तो सिर्फ ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं होती है, ये एक उनकी मानसिक अवस्था को भी बेहतर करती है। सामान्यतः हेयर ट्रांसप्लांट का जो खर्च होता है, जो बाकी शहरों में, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ एक विकसित होता हुआ राज्य है जहाँ पे केश प्रत्यारोपण या हेयर ट्रांसप्लांट अभी एक स्टार्टिंग स्टेज में है, यहाँ पे हमने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि बहुत ज़्यादा उसका खर्चा ना हो। सामान्यतः विदेशों में या बड़े शहरों में 5,000 से 8,000 बालों का मैक्सिमम प्रत्यारोपण किया जाता है, वही सुविधा अब बिलासपुर में बेहद ही कम खर्चों में उपलब्ध हो चुकी है।
हेयर ट्रांसप्लांटेशन या केश प्रत्यारोपण क्या और कैसे किया जाता है, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं।
केश प्रत्यारोपण करने की दो विधियां होती हैं, एक जिसको FUT बोलते हैं, जिसे स्ट्रिप मेथड भी कहा जाता है। ये सिर के पीछे के हिस्से से 1 सेंटीमीटर की स्ट्रिप लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसे निकाला जाता है, एक एक बाल को अलग किया जाता है, फिर जिस तरीके से धान का रोपा लगाया जाता है उसी तरीके से एक एक केश को निर्धारित जगह पर उसे प्रत्यारोपित किया जाता है। इस प्रत्यारोपण के बाद 2 से 3 महीने तक सारे के सारे जो प्रत्यारोपित केश होते हैं वो झड़ जाते हैं, फिर से 2 से 3 महीने के बाद धीरे 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 नए बाल उगना चालू होते हैं और पूरा रिजल्ट आने में 6 से 9 महीने का वक्त लग जाता है।
प्लास्टिक सर्जरी का उपयोग इन सारी बातों के अलावा और कहां कहां हो सकता है, कुछ और जानकारियां।
सामान्यतः मोटापे का इलाज प्लास्टिक सर्जरी में लाइपोसेक्शन के द्वारा किया जाता है। इसमें सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि ये कंटूर मॉडिफाइंग सर्जरी है, मतलब अगर मान लो पेट निकला हुआ है तो उसे वो सामान्य करेगी, पर वो मोटापे का संपूर्ण इलाज नहीं होती है। मान लो किसी का वजन 100 किलो है तो अगर वो चाहे कि उसका वजन 20 किलो कम हो के 80 किलो हो जाए, ये संभव नहीं होता है। अगर मान लो किसी का पेट या शरीर का कोई हिस्सा जहाँ पे चर्बी का जमाव हो गया है उसे सामान्यतः निकाला जाता है। ये स्थिति पुरुष स्तन के रूप में भी बहुत सामान्य रूप से पाई जाती है, जिसे गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। जब नवयुवक में हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस समय दाढ़ी मूछे वगैरह आती हैं, उस समय उनके स्तन का भी ग्रोथ होता है, उनका विकास होता है। 90% व्यक्तियों में ये सामान्य स्थिति में फ्लैट हो जाता है, सामान्य हो जाता है, लेकिन 10% स्थिति में वो स्तन जो है वो नॉर्मल की तरह नहीं हो पाता। इस स्थिति में लाइपोसक्शन के द्वारा स्कारलेस तरीके से बिना किसी निशान के पूरा का पूरा बढ़े हुए पुरुष स्तन का इलाज किया जाता है, जिसमें अगर मान लो वो स्विमिंग पूल में जाता है या कहीं जाता है तो वो शर्ट उतारने में उसे किसी भी प्रकार की कुंठा का सामना नहीं करना होता। सामान्य रूप से जो प्रक्रिया हम प्लास्टिक सर्जरी में करते हैं उसमें जो स्त्रियों में जो स्तन या तो अगर छोटे हो या बड़े हो या वो अपनी सामान्य स्थिति से नीचे की तरफ आ चुके हों, उस स्थिति में प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा उसे सामान्य रूप का शेप दिया जाता है। अगर स्तन छोटे हों तो या तो फैट ग्राफ्टिंग के द्वारा या इम्प्लांट के द्वारा, ब्रेस्ट इम्प्लांट के द्वारा उसे सामान्य स्थिति में लाया जाता है, और अगर मान लो ब्रेस्ट का आकार बड़ा है तो उसे सही शेप में ला के काटते हुए उसे नॉर्मल शेप में उसे लाना होता है। उसके अलावा छोटी छोटी जो स्किन की जो समस्याएं हैं, जैसे लाइपोमा हो गया, फिर सेबेशियस सिस्ट हो गई, या फिर फाइब्रोएडिनोमा जो सामान्यतः नवयुवतियों में पाया जाता है, उसका स्कारलेस इलाज किया जाता है। इससे क्या होता है कि इनके बाकी के आने वाले जीवन में किसी भी प्रकार का उस ऑपरेशन या उस बीमारी का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता।
कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, शरीर की कोई भी विकृति हो, कोई भी कमी हो, कोई भी गलत शेप हो, उन सब चीज़ों को भगवान की दी हुई जो चीज़ें होती हैं उनको आप सही शेप में लाने का प्लास्टिक सर्जन्स काम करते हैं।
देखिए, हम तो एक चीज़ ये मान के चलते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, मतलब सुंदरता सिर्फ देखने वाले की आंखों में होती है, पर वो जब आपके हृदय में आ जाए, आपके विचारधारा में आ जाए, आपको जब डिप्रेशन देने लगे तो उसका प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा इलाज अवश्य करवाना चाहिए।
इतनी अच्छी जानकारियां देने के लिए डॉक्टर विवेक चौबे को देते हैं हम धन्यवाद, और आप श्रोताओं से आज के कार्यक्रम के अंक से चाहते हैं इजाजत। संज्ञा का नमस्कार। सेहत की बातें डॉक्टर से बातें, क्या करें क्या ना करें, रोगों से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते रहें अर्पण रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी।